समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मुस्कुराहट के लिए दिए जलाते रहें, कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहें, अपनों को अपने सीने से लगाकर प्यार मोहब्बत के दिए जलाकर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहें। जी हां, दीपों का शुभ पर्व दीपावली। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा असुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम जी के राज्यारोहण पर दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसीलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व अलग अलग नाम और विधानों से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए हैं। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन से माना गया है। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है।
यस रवि, वेल, होम्स आर अडॉर्न्ड विद ग्लोइंग दियास, वाइब्रेंट रंगोलीज एंड स्पार्कलिंग लाइट्स एंड द एयर फिल्स विद द अरोमा ऑफ स्वीट्स एंड द साउंड ऑफ लाफ्टर। वेल यस, दिवाली मार्क्स द ट्रायंफ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर ईविल एंड कमेमोरेटिंग द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम एंड हिज विक्ट्री ओवर रावण। एंड एज लिसनर्स, As you walk through the streets, which are adorned with shimmering lights and vibrant decorations, you will feel the joy and excitement that fills the air. Diwali exudes a sense of unity, joy and spiritual awakening as well, and that captivates everyone to witness its grandeur. Come experience Diwali and delve into a journey like no other in our program, Aaj Savere.
जी बिल्कुल, इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ हफ्ते की पहली और नई नवेली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी गुड डे इट इज टुडे एंड वी विल गिव यू फर्स्ट द न्यूज एंड ऑल्सो We'll be providing you Metro City updates and today, as it's 20th October and it's Diwali, our program, it will be filled with the illuminating light,
Bilkul.
Which we will be presenting you in our voice and everything else. So listeners, let's start the festivities. Let's kick off our program with the headlines first.
जी बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से।
Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to countrymen on the occasion of Diwali. In a social media post, Mr. Modi wished that this festival of lights illuminate the lives of every citizen with harmony, happiness and prosperity. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended their greetings to the nation on the occasion of Diwali. In a message, President Murmu said that Diwali is one of India's most popular festivals and is celebrated with great zeal and enthusiasm. She has urged everyone to celebrate Diwali safely, responsibly and in an environment-friendly manner. President Murmu also prayed that this Diwali brings happiness, peace and prosperity to all. In his message, Mr. Radhakrishnan said that Diwali celebrates the triumph of goodness over evil and knowledge over ignorance. Well, we are here with the celebrations and the fireworks. Prime Minister Narendra Modi has called upon citizens to ring in the festive season by buying Swadeshi products and celebrate the hard work of 140 crore Indians. Mr. Modi also urged citizens to share on social media that what they have bought during the festive season. The Prime Minister said this will inspire others to also do the same. In reply to a post by MyGov India, Mr. Modi emphasized the need to buy products made in India and proclaim, "Garv se kaho, ye Swadeshi hai."
Prime Minister's appeal comes amid a nationwide movement to boost local industries and artisans, reinforcing the message of self-reliance and economic empowerment. Supporting this initiative, MyGov India launched a special campaign titled Celebrate Diwali and Empower Swadeshi, inviting citizens to take a pledge to buy only Swadeshi products this festive season. The campaign emphasizes the importance of supporting local artisans whose craftsmanship and livelihoods are vital to India's cultural and economic fabric. In its message, MyGov India highlighted that Prime Minister Modi is inspiring the nation to go vocal for local. This interactive campaign aims to create a ripple effect of awareness and pride among consumers, linking personal choice with national progress. The Swadeshi movement, deeply rooted in India's freedom struggle, has regained momentum in recent years as a crucial pillar of government's Atmanirbhar Bharat, Self-Reliant India initiative. By promoting indigenous products, the campaign seeks to boost local economies, create jobs, and reduce dependence on imports. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ कल रात आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की और सुविधाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर दिल्ली के स्टेशनों पर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं और रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि होल्डिंग एरिया और बड़ी संख्या में टिकट काउंटरों ने यात्रा को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने मुंबई, पुणे, सूरत, बेंगलुरु और सिकंदराबाद के स्टेशनों पर भी ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जहां बड़ी संख्या में यात्री आते हैं।
द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर सेकेंड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन बिहार विल एंड टुडे। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 243 सीट्स, 122 कंस्टिट्यूएंसीज will go to polls in this phase on 11th of November. Today is also the last date for withdrawal of candidature for the first phase of assembly elections. 121 constituencies spread across 18 districts will go to polls in the first phase on 6th of November. The counting of votes will be taken up on 14th of November.
इजरायली रक्षा बलों IDF ने गाजा में कई हवाई हमलों के बाद संघर्ष विराम समझौते को फिर से लागू करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में IDF ने कहा है कि वह संघर्ष विराम समझौते का पालन करना जारी रखेगा, लेकिन यदि इसका उल्लंघन किया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले IDF ने कहा था कि उसने गाजा में हमास से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इनमें हथियार भंडारण केंद्र, गोलीबारी की जगहें, आतंकवादी सेल और लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगें शामिल थीं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए किया जाता था। IDF के हमले दक्षिणी गाजा के राफा क्षेत्र में हमास की कार्रवाई के बाद किए गए। इजरायली सेना का कहना है कि हमास ने आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहे IDF सैनिकों पर टैंक रोधी मिसाइलें दागी और गोलाबारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गन्ने की कीमतों में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अगेती गन्ने की किस्मों का मूल्य 400 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पछेती किस्मों का मूल्य भी 393 रुपए से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों, वंचितों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। पिछले 11 फसल क्षेत्रों में 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।
On to the world of sports, first cricket. In women's cricket, England defeated India by 4 runs in the ICC ODI World Cup at Holkar Stadium in Indore last night. Chasing a target of 289 runs set by England, India managed to score only 284 for 6 in 50 overs. Smriti Mandhana's 88, along with Harmanpreet Kaur's 70 and Deepti Sharma's 50, kept the hosts in contention. Electing to bat, England scored 288 for 8 wickets in stipulated 50 overs. Heather Knight's 109 off 91 balls formed the backbone of England's innings and ultimately proved to be the defining factor in the match. Heather was adjudged the player of the match. For India, Deepti Sharma scalped 4 wickets and debutant Sri Charani took 2.
एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कल बहरीन में कुराश में कांस्य पदक जीता। लड़कियों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में 6 पहलवानों के बीच हुए मुकाबले में उन्हें क्वार्टर फाइनल में बाई मिली और उन्हें सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की डी तुर्सुनोवा से हार का सामना करना पड़ा। कुराश कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुई थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। इसका इतिहास लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर। तो शगुन, शुरुआत आप किस मेट्रो के समाचार से कर रही हैं?
यस रवि, आई विल बी बिगिनिंग विद चेन्नई।
जी।
Where the northeast monsoon is likely to pick up pace this week in the state, and according to Met Department, and the rainfall may occur due to low pressure expected to form over the southwest Bay of Bengal around 21st of October. The city and suburban area are there likely to receive light to moderate rainfall in some areas on 21st. Due to this existing situation, the state government has set up a control room as precautionary measure to monitor the advancement of the monsoon and also the formation of a low pressure. The official of the Directorate of Revenue Intelligence seized an illegal consignment of Chinese crackers. They were valued at 5 crore rupees at the Tuticorin port. The officials also arrested the importer of the consignment. Now let's head straight to Bengaluru. Karnataka Transport Minister Ramalinga Reddy has clarified on the recognition by the London Book of World Records to KSRTC, the public sector transport company. The London Book of World Records, he added, is a private record-keeping body awarding recognition to different organisations. Chief Minister Siddaramaiah had posted on his official social media that KSRTC was recognised by the London Book of World Records for the largest number of free bus rides availed by women with over 564 crore journeys. Well, we are heading to Hyderabad now, and the spirit of Deepavali has completely taken over Hyderabad. Well, with the onset of Festival of Lights, the city's old and new bazaars and shopping centres, they were bustling with hectic activity since past few days. Heavy rush was witnessed at sweet shops, gifting outlets, flower markets, jewellery stores, malls and wholesale cracker stores. Almost all the commercial establishments, individual houses, apartments and offices in every nook and corner of Hyderabad, they have been lit up by colourful lights, and this is much the same in all of the nation, welcoming the festive spirit of Diwali. Meanwhile, greeting the people of Telangana, Governor Jishnu Dev Varma appealed to them to buy the local products to celebrate this festival so as to bring new light into the lives of the indigenous manufacturers in the true spirit of Atmanirbhar Bharat.
शगुन, आप इतने अच्छे अच्छे समाचार दे रही हैं दीपावली के शुभ अवसर पर। आप ये बताइए, आपने दीपावली की तैयारी कर ली है कि नहीं?
Yes, and I have been really busy from past one week, and the streets, they have been bustling with so much crowd that I have to keep going to the markets to buy stuff for me.
वो तो आपको देख के लग रहा है, आप जिस तरह से सज धज कर आज स्टूडियो में आई हैं, वो लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है।
Yes, this is the spirit of Diwali actually, Ravi.
तो अब हम दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के समाचार दे दें अपने श्रोताओं को।
Of course, Ravi, over to you.
तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ पर इस उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव में दिल्ली के हजारों नागरिकों के साथ साथ दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये दीपोत्सव केवल दीपों का उत्सव नहीं बल्कि एक नई जागृति का अग्रदूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक नई कहानी लिख रही है जहां आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस दीपोत्सव में एक शानदार ड्रोन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रामायण थीम पर आधारित प्रकाश प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उत्सव में हजारों ड्रोन द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रामायण की दिव्य गाथा का पुनरुत्पादन किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा दिवाली को देखते हुए पूरे शहर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार नागरिकों को त्योहारों के दौरान सुरक्षित वातावरण प्रदान कराने के लिए प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक केंद्रों पर विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस बीच दिवाली पर्व के अवसर पर दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में 21 अक्टूबर तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से होकर जाने वाली बसों और व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही छत्ता रेल, शांतिवन चौक, दिल्ली गेट और जीपीओ चौक से मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। यातायात पुलिस ने परामर्श में बताया है कि छत्ता रेल चौक के आगे ई रिक्शा, ऑटो, साइकिल रिक्शा नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड, एएसआई पार्किंग, दंगल मैदान, ओमेक्स मॉल में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से फुटपाथ का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। दिल्ली के अवसर पर दिल्ली अग्निशमन विभाग ने आग से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए 41 स्थानों की पहचान कर दमकल गाड़ियां तैनात कर दी हैं। इनमें 24 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी एके मलिक ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने होमवर्क कर लिया है शगुन, एकदम तैयारी कर ली है अग्निशमन विभाग ने, क्योंकि दीपावली के पर्व पर बहुत सी घटनाएं आग लगने की हो जाती हैं।
ट्रू ट्रू दैट।
आगे बढ़ते हैं। दिवाली के अवसर पर आज दिल्ली क्षेत्र के रेलवे टिकट आरक्षण कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। उत्तर रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट स्थित आरक्षण केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली मंडल के आनंद विहार टर्मिनल, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पानीपत, रोहतक और नोएडा समेत करीब 40 से अधिक स्थानों के टिकट आरक्षण केंद्र सायंकालीन पारी में बंद रहेंगे। रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर स्थित चालू टिकट आरक्षण काउंटर प्रतिदिन की तरह निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। और शगुन बढ़ते हैं महाराष्ट्र मुंबई की ओर। दिवाली के त्योहारों को देखते हुए बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने अग्निशमन विभाग की ओर से अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए पटाखे फोड़ने के संबंध में महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बीएमसी ने दिशा निर्देशों की एक सूची तैयार की है और मुंबई वासियों से ऐसे पटाखे फोड़ने का आग्रह किया है जिनसे वायु और ध्वनि प्रदूषण कम हो। इस सलाह में कई प्रमुख सावधानियों का उल्लेख किया गया है, जैसे दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ते समय खुद का ध्यान रखना, ऐसे पटाखे जिनसे वायु और ध्वनि प्रदूषण कम हो, बच्चों द्वारा पटाखे फोड़ते समय माता पिता द्वारा कड़ी निगरानी रखना, आतिशबाजी करते समय आसपास के लोगों और पालतू जानवरों का ध्यान रखना और पटाखे फोड़ते समय सूती कपड़े पहनना। और दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आपात स्थिति में नागरिक 101 या 1916 नंबरों पर, जो नगर पालिका के हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। आज की शाम के बाद राज्य में काली पूजा की जाएगी। कार्तिकेय माह की अमावस्या तिथि को काली पूजा की जाती है। कई घरों और संगठित क्लबों ने काली पूजा का आयोजन किया। राज्य के दक्षिणेश्वर मंदिर, कालीघाट मंदिर, आध्यापीठ मंदिर और तारापीठ मंदिर में पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। बिल्कुल ठीक लगा है। जब मैं आ रहा था आज शगुन, तो रास्ते में कोहरा मिला था थोड़ा सा।
इवन आई विटनेस दैट।
जी, और अब तो वैसे भी वो दिन आने वाले हैं जब कोहरा अक्सर छाया रहेगा।
जी,
तो राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 35 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 34 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain. Minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad, again, generally cloudy sky. It's expected over there with light rain. The temperature, minimum temperature, will be 21 degrees and maximum will be around 32 degrees Celsius there.
जी, और इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है, जो प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है. ये दिवस ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के प्रति समर्पित है. विश्व ऑस्टियोपोरोसिस 2025 का विषय ये अस्वीकार है, यानी इट्स अनएक्सेप्टेबल है, जो ऑस्टियोपोरोसिस देखभाल और रोकथाम की वैश्विक उपेक्षा को समाप्त करने का एक आह्वान है. और शगुन, इस वर्ष का अभियान उन लाखों लोगों पर केंद्रित है जो नाजुक फ्रैक्चर से पीड़ित हैं, जिनका निदान और उपचार नहीं किया गया है. ये दिवस लोगों को अपने मांसपेशी स्वास्थ्य एवं अपनी हड्डियों को सुरक्षित करने के लिए जल्दी कार्रवाई और स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सकों को उनके समुदायों की हड्डियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है.
एंड इट कैन बी ट्रीटेड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड यू शुड डेफिनेटली एवरीबॉडी शुड हैव अ हेल्थी डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी रेगुलर वेट बेयरिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एज वेल.
जी, और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ. तो 1752 में आज के दिन खुश वजीर ने सम्राट से बदन सिंह को महेंद्र की उपाधि के साथ राजा बनाने और सूरजमल को राजेंद्र की उपाधि के साथ मुबार बहादुर बनाने का आग्रह किया था.
In 1774, New Regulating Act was introduced, which abolished the East India Company government, and a new government then was formed.
1960 में आज के दिन भारतीय पर्वतारोही पहली बार कुमाऊं की पहाड़ियों में नंदा घुंची की चोटी पर पहुंचे थे.
In 1962, the first Indian Air Force Unit No. 2 Squadron, it re-equipped with the NAT at Ambalan, and No. 9 Squadron soon followed suit.
1969 में आज के दिन पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी.
In 1991, 6.1 to 7.1 earthquake in Uttarkashi and three northern districts of UP in the Himalayan foothills, it killed more than 1,600 people.
और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का. तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है एच सी दासप्पा का. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश के नव निर्माण में उनका समान योगदान रहा. आपका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1894 मैसूर और निधन हुआ 20 अक्टूबर 1964 में. दासप्पा वर्ष 1927 से 1938 तक मैसूर असेंबली के सदस्य रहे. भारत की आजादी के बाद वे मैसूर मंत्रिमंडल में वित्त और उद्योग मंत्री भी रहे और गांधी जी के रचनात्मक कामों के प्रति दासप्पा की बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी.
जी लिसनर्स, लेट मी टेल यू अबाउट पॉल एड्रियन डिराक, द थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल. And he laid the foundation for both quantum electrodynamics and quantum field theory as well. Well, he shared the 1933 Nobel Prize in Physics with Erwin Schrödinger for the discovery of new productive forms of atomic theory.
और शगुन, अब बात करते हैं दादू चौगुले दत्तात्रेय के बारे में, जो भारत के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक थे. आपका जन्म हुआ, आपकी जो मृत्यु हुई थी, आपका जो निधन हुआ था, वो हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को. और उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था. उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें साल 2018 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. मोतीबाग तालीम से जुड़े दादू चौगुले दत्तात्रेय ने 1970 के दशक में महाराष्ट्र केसरी, रुस्तम हिंद केसरी और महान भारत केसरी जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए थे.
Listeners, now I'll tell you about a singer-songwriter and guitarist Thomas Earl Petty. Well, today it's his birth anniversary. He was the leader and frontman of the rock bands Tom Petty and the Heartbreakers, and then there was another band of his, Mudcrutch. And then he was a very successful solo artist as well. Over the course of his career, he sold more than 80 million records worldwide, making him one of the best-selling artists of all times.
Among the wildflowers, you belong in a boat out at sea. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere, you feel free.
और अब बात करते हैं गोवर्धन राम माधव राव त्रिपाठी के बारे में, जिनका नाम आधुनिक गुजराती साहित्य में कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक और इतिहासकार इत्यादि अनेक रूपों में माने हैं। आपका जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1855 और निधन 1 अप्रैल 1907 को। उनको सर्वाधिक प्रतिष्ठा द्वितीय उत्थान के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में प्राप्त हुई। जिस प्रकार आधुनिक गुजराती साहित्य की पुरानी पीढ़ी के अग्रणी नर्मद माने जाते हैं, शगुन उसी प्रकार उनके बाद की पीढ़ी का नेतृत्व गोवर्धन राम द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य के गंभीर अनुशीलन और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आदि विभूतियों के विचारों के प्रभाव से उनके हृदय में प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृति के पुनरुत्थान की तीव्र भावना जागृत हुई थी।
Well, yes, listeners, Ravi was telling you about Govardhan Ram Madhav Ram Tripathi, well, the Gujarati language novelist of the late 19th and early 20th centuries. Now let me tell you about another musician, a composer and a singer, Lucy Elizabeth Simon. For the theatre and of popular songs, she recorded and performed as a singer and as a songwriter as well, and was known for the musicals The Secret Garden and Dr. Zhivago. Well, in 1963, she began performing with her sister, Carly Simon, as the Simon Sisters. They released 3 albums, beginning with the Meet with Simon Sisters, and this featured a number of her famous songs. This song that I am playing for you, this is Winter's on the Wing.
To see it, stand and breathe it on the day. Stoop and feel it, stop and hear it.
और शगुन, आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से वे एक रहे हैं। उनका जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1978 को। सहवाग ने अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और सहवाग एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ा और सन डोनाल्ड ब्रेडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया।
Well, yes, he is widely regarded as one of the most destructive openers, the way he used to play in the beginning when he used to open, right?
जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं केदारनाथ भट्टाचार्य के बारे में।
Yes, who is popularly known as
कुमार सानू। जी, भारतीय सिनेमा के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और सफलतम पार्श्व गायकों में से वे एक रहे हैं, आज भी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का 90 का दशक कुमार सानू की आवाज के लिए जाना जाता था।
Wow, what a voice. Well, king of melody. Well, he has sung thousands of songs along with Hindi. He has sang songs in Kannada, Telugu, Gujarati, Bengali, and you name it. He has covered the languages and he has sung so many songs. We all know that.
Bilkul, aapne theek kaha. 90 ke daur mein Kumar Sanu ke ek ke baad ek super hit gaane aaye jo aaj bhi sune jaate hain aur isi karan unka naam Hindi film industry ke sabse pasandida gaayakon ki suchi mein rakha jata hai. Aur kareeb 20,000 गानों का रिकॉर्ड बना चुके कुमार सानू ने कई भाषाओं में गीत गाए और एक दिन में 28 गाने गाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया। और आपको बताएं कि कुमार सानू ने गायकी में अपने कैरियर की शुरुआत 1986 में आई एक बंगला फिल्म 3 किन्ना से की, जिसके बाद वे अपना कैरियर बनाने के लिए कोलकाता से मुंबई चले आए थे।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
चलते चलते आज का विचार कि जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है वही वास्तव में सबसे ज्यादा सुखी रहता है। तो दीपावली की अनंत बधाइयों शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए शगुन चोपड़ा और रवि कपूर को आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
शुभ दीपावली।